दोपहर का वक्त था। हवेली के बाहर धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन शकुंतला के अंदर जैसे सब धुंधला धुंधला था। वो काफी देर तक अपने कमरे में बैठी रही। रत्ना देवी और विश्वनाथ की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। उसने धीरे से फोन उठाया, कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही, फिर वीरेंद्र का नंबर डायल कर दिया। हेलो, दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई। मुझसे मिल सकते हो? शकुंतला ने बिना घुमाए फिराए कहा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कहाँ? शहर के उस पुराने रेस्टोरेंट में जहां हम पहले जाया करते थे। वीरेंद्र की सांस जैसे एक पल को अटक गई। ठीक है, मैं आता हूं। करीब आधे घंटे बाद रेस्टोरेंट का माहौल शांत था। हल्की हल्की म्यूजिक, कुछ ही लोग। कोने की टेबल पर शकुंतला पहले से बैठी थी। उसके हाथ आपस में कसकर जुड़े हुए थे, आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी दरवाजा खुला, वीरेंद्र अंदर आया। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिली और जैसे वक्त वहीं ठहर गया। वो धीरे धीरे उसके सामने आकर बैठ गया। कैसी हो? उसने हल्के से पूछा। शकुंतला ने बस सिर हिला दिया। ठीक। दोनों के बीच फिर वही चुप्पी। वेटर आया। ऑर्डर मैडम? कुछ नहीं, शकुंतला ने कहा। दो कॉफी, वीरेंद्र ने धीरे से कहा। वेटर चला गया। कुछ सेकंड बाद, भैया को सब बता दिया मैंने, शकुंतला ने सीधे कहा। वीरेंद्र का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। फिर शकुंतला हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी खाली थी। जैसा तुम सोच रहे हो, उससे भी ज्यादा खराब, उसने धीरे धीरे सब बताया। विश्वनाथ का गुस्सा, उसके शब्द और रत्ना देवी की शर्त। वीरेंद्र चुपचाप सुनता रहा। हर बात के साथ उसका चेहरा और भारी होता गया। कॉफी आ चुकी थी, लेकिन दोनों ने हाथ तक नहीं लगाया। तो मतलब, वीरेंद्र ने आखिरकार कहा, जब तक मेरे घर वाले वहां आकर माफी नहीं मांगते, तब तक तुम नहीं आ सकती? हां, शकुंतला ने धीरे से कहा। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे शब्द खत्म हो गए हों। तभी शकुंतला ने नजरें झुका ली। गलती मेरी है, वीरेंद्र चौंका। क्या? मैंने ही भैया को सब बढ़ा चढ़ाकर बताया था, उसकी आवाज धीमी हो गई। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी, टूटी हुई थी। हर बात, हर दर्द मैंने और बढ़ा करके उनके सामने रखा। उसकी आंखें नम हो गईं, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। वीरेंद्र कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, नहीं शकुंतला, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता, तो शायद आज ये दिन नहीं आता। दोनों की आंखों में एक ही दर्द था, पछतावे का। तभी वीरेंद्र ने अचानक कहा, मैं बात करूं विश्वनाथ से? शकुंतला ने तुरंत सिर उठाया। बिल्कुल नहीं, उसकी आवाज में साफ डर था। तुम उन्हें जानते हो, वो किसी की नहीं सुनते। लेकिन कोशिश तो नहीं? इस बार शकुंतला ने थोड़ा तेज कहा। पास की टेबल पर बैठे लोग एक पल को उनकी तरफ देखने लगे। वो तुरंत धीमी हुई। तुम नहीं जानते, अगर तुम उनके सामने गए तो बात और बिगड़ जाएगी। वीरेंद्र चुप हो गया। उसने नजरें फेर ली, जैसे वो समझ रहा था लेकिन मान नहीं पा रहा था। अब क्या करें? उसने धीरे से पूछा। शकुंतला कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान लाई, जो दर्द से भरी थी। अब कुछ नहीं, वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब, शकुंतला ने गहरी सांस ली, अब सब भगवान पर छोड़ देते हैं। अगर हमारे लिए कुछ बचा होगा तो वो खुद रास्ता बना देगा, और अगर नहीं, उसकी आवाज हल्की सी टूट गई, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये कहानी यहीं तक थी। रेस्टोरेंट का शोर अब जैसे बहुत दूर लग रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सा ठहराव आ गया। ना कोई बहस, ना कोई उम्मीद की जोरदार बात, बस एक खामोश स्वीकार। वीरेंद्र ने धीरे से कॉफी का कप उठाया, एक घूंट लिया, फिर वापस रख दिया। इतना आसान है तुम्हारे लिए? उसने धीमे से पूछा। शकुंतला की आंखें भर आईं। आसान? वो हल्का सा हंसी। अगर आसान होता तो मैं आज यहां नहीं होती। कुछ सेकंड, फिर लेकिन कभी कभी, उसने धीरे से कहा, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो सही होता है वही करना पड़ता है। वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा। और सही क्या है? शकुंतला ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद उसे खुद भी नहीं पता था। दोनों चुप बैठ गए। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, लेकिन उस टेबल पर सब कुछ जैसे रुक गया था। दो लोग जो एक दूसरे के थे, लेकिन अब बीच में हालात, अहंकार और पुराने जख्म खड़े थे। कुछ देर बाद शकुंतला धीरे से उठी। मुझे जाना चाहिए। वीरेंद्र भी खड़ा हो गया। दोनों दरवाजे तक साथ आए, लेकिन इस बार कोई रोकने वाला नहीं था। ना किसी ने कहा रुको, ना किसी ने पीछे मुड़कर देखा। बस एक नजर, जिसमें सब कुछ था और कुछ भी नहीं। और फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चल दिए। पीछे छूट गया एक अधूरा रिश्ता और आगे एक अनजाना रास्ता, जहां अब सच में सब कुछ भगवान के भरोसे था। रात फिर से हवेली पर उतर चुकी थी, लेकिन इस बार सन्नाटा पहले जैसा शांत नहीं था। उसमें हल्की हल्की बेचैनी खुली हुई थी। दरवाजा खुला, विश्वनाथ अंदर आया। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त था, लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो। उसने जूते उतारे भी नहीं, सीधे हॉल की तरफ बढ़ गया। सब लोग हॉल में आओ। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी भारी थी कि पूरे घर में गूंज गई। एक एक करके सब आने लगे। आर्यन, अतिथि, विशाल, रम्या, अक्षरा, रत्ना देवी, सुषमा देवी, सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हुआ है। शकुंतला भी धीरे धीरे चलते हुए आई। उसके कदम खुद ब खुद रुक रुक कर चल रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं भैया को पता तो नहीं चल गया, उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजर एक पल के लिए विश्वनाथ पर गई। वो बीच हॉल में खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए, चेहरा बिल्कुल सख्त, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या फिर किसी सच के सामने आने का। सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। हॉल में अजीब सी खामोशी छा गई। घड़ी की टिक-टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। शकुंतला ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। गला सूखने लगा था। अगर भैया को पता चल गया तो क्या होगा। उसने धीरे से अक्षरा की तरफ देखा। अक्षरा भी उतनी ही परेशान थी। विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे सबकी तरफ नजर घुमाई। उसकी आंखें जैसे हर चेहरे को पढ़ रही थीं। और फिर उसकी नजर आकर शकुंतला पर टिक गई। बस कुछ सेकंड, लेकिन उन कुछ सेकंड में ही शकुंतला के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। हॉल का माहौल अब और भी भारी हो चुका था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। और ठीक उसी पल